सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और ये है दसवां स्कंद परम पुरुषार्थ स्कंद का नाम अध्याय ये है पांच और अध्याय का नाम नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट और श्लोक संख्या आज हमारा है बोर्ड पर 26। तो पहले मेरे पीछे शब्दार्थ उच्चारण कीजिए कचित चाहे पश्यव्यम गौवों की सुरक्षा निरोजम बिना कष्ट या रोग के भूरे पर्याप्त अम्बु जल तृण घास विरोधम पौधे बृहद्वनम विशाल जंगल तान ये सारे प्रबंध वहां हैं। अधुना अब यत्र जहां आसे रह रहे हैं त्वम तुम आप सुहद व्रता मित्रों से घिरे हुए। श्लोक का विचारण करेंगे कचित पश्यव्यम निरोजम भूर्यम्बोत्रण विरोधम बृहद्वनम तदधुना यत्रासे त्वं सुहृद्व्रतः काचित् पश्यव्यं निरोजम् भूर्यम्बोत्रण विरोधम् बृहद्वनम् तदधुना यत्रासे त्वं सुहृद्व्रतः काचित् पश्यव्यं निरोजम् भूर्यम्बोत्रण विरोधम् बृहद्वनम् तदधुना यत्रासे त्वं सुहृद्व्रतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए हे मित्र नंद महाराज आप जिस स्थान में रह रहे हैं क्या वहां का जंगल पशुओं गौवों के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहां रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। तात्पर्य सुनिए मानव सुख के लिए पशुओं विशेष रूप से गौवों की देखभाल करनी चाहिए। इसलिए वसुदेव ने पूछा कि क्या जहां नंद महाराज रहते हैं वहां पशुओं के लिए अच्छा प्रबंध है? समुचित मानव सुख के लिए गौवों की रक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि जंगल तथा घास और जल से पूर्ण पर्याप्त चारागाह होने चाहिए। यदि जानवर सुखी रहेंगे तो प्रचुर दूध मिलेगा जिससे मनुष्यों को तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी जिनसे वे सुखपूर्वक जीवन बिता सकेंगे। भगवद गीता 18:44 में आदेश है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भला पशुओं को समुचित सुविधाएं प्रदान किए बिना मानव समाज किस तरह सुखी बन सकता है? यह बहुत बड़ा पाप है कि लोग कसाई घर चलाने के लिए पशु पालन कर रहे हैं। इस आसुरी कृत्य से लोग वास्तविक मानव जीवन का अपना अवसर विनष्ट कर रहे हैं। चूंकि वे कृष्ण के उपदेशों को कोई महत्व नहीं दे रहे इसलिए उनकी तथाकथित सभ्यता की प्रगति पागल खाने के लोगों के पागलपूर्ण प्रयासों की तरह है। आइए स्तुति पाठ करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधसे ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चदेशधारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों और वैष्णव माताओं का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी सुबह की सभा में, जिसमें कि श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। ये 26वां श्लोक। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का थोड़ा सा महात्म, चूंकि हम लोग भागवतम सुनते हैं प्रतिदिन, तो इसका क्या लाभ है। एक वैष्णव खंड है पद्म पुराण के अंदर, तृतीय अध्याय और 15वें श्लोक में कहा जा रहा है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवितम। अगर कोई रोज नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का क्या करता है, परिसेवितम, लगाता है अपने आप को प्रकृष्ट रूपेण सेवितम, मतलब प्रयास करता है कि मैं भागवतम रोज पढ़ूंगा या श्रवण करूंगा, तो क्या लाभ मिलता है उससे। पितुर मातुश्च भार्या कुल पंक्ति सुतारिता। तो बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि अपने माता पिता पत्नी इन तीनों के कुलों का उद्धार कर देगा अगर कोई रोज केवल भागवतम सुनता है या पढ़ता है। तो बहुत ही सुंदर ये विचार है कि हम लोग रोज हर रोज सुबह सुबह भागवतम सेवन करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। अगर नहीं सुबह सुन पाए तो कम से कम दिन में हमें जरूर भागवतम के संपर्क में आना चाहिए। और एक और महात्म है, चूंकि आजकल गीता मैराथन चल रहा है, उसमें तो बहुत ही खतरनाक शब्द हैं, पढ़ने में भी डर लगता है मुझे। उसमें कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भक्ति पूर्वक मेरी प्रसन्नता और भक्तों की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भागवतम को घर में रखना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं। और अगर कोई स्वयं को वैष्णव मानते हुए भागवत घर में नहीं रखता, बहुत खतरनाक शब्द है, तो उसे चंडाल से भी निकृष्ट मानना जाना चाहिए। तो इस अगर घर में मान लीजिएगा भागवत नहीं है, तो इस महीने में तो अवश्य ही खरीद कर रख लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने में गीता मैराथन चल रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान बोलते हैं मैं समस्त देवताओं के साथ उसके घर में निवास करता हूं, अगर कोई भागवतम को घर में भी रखता है तो। आज की जो ये श्लोक है, प्रसंग आप जानते ही हैं कि नंद महाराज और वसुदेव जी की भेंट हुई है, और भेंट से ये देखना चाहिए कि क्या चर्चा हुई उन दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहली चर्चा क्या होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियस हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ भगवान की चर्चा होगी, और अगर आप कुछ मेटलिस्टिक हैं तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे ही पूछेंगे। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद बीमार थे, तो भक्तों ने पूछा प्रभुपाद आप दर्शन मत दीजिए अब, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। प्रभुपाद ने कहा नहीं, दर्शन मैं दे सकता हूँ। तो प्रभुपाद बैठ गए अपने इसी जो वृंदावन में मंदिर है, तो वहां बैठे थे प्रभुपाद, तो सब लोग आ रहे थे और बार बार जो भी आ रहा था यही पूछ रहा था, स्वामी जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो प्रभुपाद परेशान हो गए, प्रभुपाद ने कहा ना कि दर्शन करना देना बंद कर दो, क्योंकि हर कोई आकर यही पूछ रहा है आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना, अर्थात अपने मूल भाव में स्थित होना ही स्वास्थ्य है। तो कहने लगे सब लोग तो देहात्मग्रस्त हैं, भवरोग से पीड़ित हैं और सब कह रहे हैं स्वस्थ हूं मैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब भी हम किसी से मीटिंग करें तो क्या चर्चा चलती है। एक बार भक्ति जो हॉस्पिटल है हमारा बॉम्बे में, तो वहां पर एक भक्त आए थे एक बार चौपाटी से, वो बता रहे थे हमारे सेंटर में कि दिन में जब लंच होता है डॉक्टर्स का तो डॉक्टर्स अपना प्रसाद लेने के लिए आते हैं, क्योंकि भक्ति बिंदन हॉस्पिटल जो है वहां पर पूरा विधिवत नियम फॉलो होता है सब, जैसे पेशेंट को भी कहा जाता है एक माला करनी पड़ेगी। तो जब वहां से पेशेंट जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं कि मैं ठीक क्यों हो गया, इतना सुंदर एटमोसफियर देते हैं वहां पर भक्त लोग। तो डॉक्टर्स का उसने बताया कि जब डॉक्टर्स लंच के लिए आए तो प्रसाद के लिए जैसे बैठ जाते हैं, प्रसाद माहौल है वहां पर, सब लोग प्रसाद के लिए बैठे, तो दो डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो एक भक्त पास में जाकर बैठ गया कि देखता हूं ये आपस में क्या चर्चा करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स होंगे तो आपस में क्या बात करेंगे, भाई ये पेशेंट है इसकी दवाई ये दवाई काम करती है ये नहीं करेगी, नई दवाई कौन सी आई है। या कोई टीचर्स होंगे तो आपस में कुछ और चर्चा करेंगे, बच्चे कैसे हैं, कोर्स इतने आ गए। लेकिन वो भक्त बता रहा था कि जब मैं उन डॉक्टर्स के पास जाकर बैठा, दोनों डॉक्टर्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि भक्ति रसामृत सिंधु में कितना सुंदर बताया, भक्ति की कितनी सुंदर विवेचना है। तो वो भक्त जो है एस्टॉनिश हो गया, चकित हो गया, अरे वाह, डॉक्टर्स लोग लंच में बैठ करके कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, ग्रंथों के स्टडी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, इट मीन्स दे आर फुल्ली कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम जब भी किसी से मीटिंग करें तो यहां पर तो स्वयं भगवान के दोनों पिता हैं अगर देखा जाए तो, एक दृष्टि से, एक तो उन्होंने तो जन्म दिया और दूसरे ने पाला जैसे कहा जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये भी बताया कि हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्ण ने दोनों ही जगह जन्म लिया था, वृंदावन में भी और यहाँ मथुरा में भी। तो दोनों में क्या चर्चा होगी, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जब दो सन्यासी आपस में मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है। तो स्वयं कृष्ण के दोनों ही पिता हैं और दोनों आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, और वो चर्चा कर रहे हैं देखिए, कच्चित पश्यवम निरुजम, ये सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक का, जो दो एक शब्द छोड़ के पश्यवम और निरुजम, कि गौवों की सुरक्षा। पश्यवम का अर्थ है कोई भी पशु, लेकिन यहां प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में दे रहे हैं गौवों की सुरक्षा बिना कष्ट और रोग के, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और तात्पर्य में भी हमने सुना कि मानव सुख के लिए पशुओं और विशेष रूप से गौओं की देखभाल करनी चाहिए। तो पूरी तरह से प्रभुपाद जी जो हाईलाइट कर रहे हैं इस पर्पट को अगर हम देखें तो गायों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, और सुख का साधन बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गाय को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मनुस्मृति मनुष्य संहिता जो है उसमें पहला अध्याय और श्लोक संख्या 10 में भी यही कहा गया है, बिल्कुल यही शब्द है जो आज के श्लोक में लिखा है, पश्यवम निरुजम, उसमें कहा गया पशु नो रक्षणाम। तो पशुओं नो रक्षणाम, पशुओं की रक्षा होनी चाहिए, और विशेष रूप से मनु महाराज भी यही एक्सप्लेन करते हैं पशुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गाय। एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, सारे जानवरों में सबसे सबसे श्रेष्ठ जानवर कौन सा है। तो किसी व्यक्ति ने दूसरे जानवर का नाम लिया, तो उसने कहा आपने गाय का नाम क्यों नहीं लिया। उन्होंने बताया कि गाय वास्तव में जानवरों में शामिल नहीं है, गाय जो है भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है। तो आज का जो हमने सोचा है कि डिस्कशन, इसमें यही सोचा कि गाय के विषय में ही पूरा रखा जाए इस क्लास को, ताकि चूंकि श्लोक में भी गाय और पर्पट में तो प्रभुपाद ने पूरी तरह से गाय को ही दिया है। एक बार सिले प्रभुपाद बैठे थे, एक भक्त एक चित्र बना के लाया भगवान कृष्ण का, और प्रभुपाद जी को दिखाया, प्रभुपाद देखो मैंने कृष्ण का चित्र बनाया। तो उसमें क्या था कि कृष्ण का जो चित्र था उसमें कृष्ण भगवान को अकेले दिखाया था उस भक्त ने। प्रभुपाद ने कहा कि तुमने सही चित्र नहीं बनाया। तो भक्त ने पूछा क्यों प्रभुपाद, मैंने कृष्ण का मुखमंडल सही नहीं बनाया या क्या सही नहीं बनाया इसमें? प्रभुपाद ने कहा कि आपने कृष्ण को अकेले दिखाया है, कृष्ण कभी भी अकेले नहीं रहते, वो अपने भक्तों के साथ रहते हैं, इसमें मयूर होने चाहिए, इसमें गाय होनी चाहिए। तो देखिए कृष्ण के साथ में एक तो मयूर होते हैं, तो भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया मयूर को, और गाय की भी चल रही है कि राष्ट्रीय पशु या इस तरह से कुछ एक बार उठी थी पीछे, सुषमा स्वराज ने उठाई थी बात कि गाय को भी राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। तो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय हैं, और विशेष रूप से हम हरे कृष्ण के भक्तों को तो गाय को बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्वामी हैं, हमारे जो नायक हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको सबसे ज्यादा प्रिय है गाय। वो स्वयं देखिए जब गोपाष्टमी आती है तो वो कथा हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि वो जब गाय जा रही है तो स्वयं बिना जूती के जा रहे हैं, कि हे माता हे पिता सेवक को, सेवक कैसे जूती पहन सकता है जब गाय उन्हें नहीं पहनी, तो नंगे पांव चलते हैं भगवान। तो इससे पता चलता है, तो भगवान ने अपने जितने भी धाम हैं, जैसे अपना गांव का नाम भगवान ने रखा गोकुल, और उनके जो धाम है उनका उसका नाम क्या है गोलोक, तो उसके विषय में बताया, गर्ग संहिता में बताया गया सकर्ता कृष्ण चंद्रस्तु गोलोकेश परात पराह येन वे निर्वीता सर्वे ब्रह्मा विष्णु शिवादयः, कि जो सहकर्ता वही सबका करने वाला है। गर्ग मुनि जी कहते हैं कृष्ण का इंट्रोडक्शन देते हैं गोलोक खंड में, तो कहते हैं सकर्ता कृष्ण चंद्रस्तु गोलोकेश परात पराह, वो गोलोकों का स्वामी है, वही सब कुछ करने वाला है। येन वे निर्मिता सर्वे ब्रह्मा विष्णु और शिव आदयः, अर्थात शिव जी विष्णु और ब्रह्मा जी आदि आदि सबको बनाने वाले प्रकट करने वाले यही हैं गोलोक के स्वामी। तो उनके साथ में जैसे अगर हम देखें तो जो उनकी सबसे भक्तिन हैं उनको गोपियां कहा जाता है, गोपियां ग्वाले, तो सब गाय से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनका खुद का नाम है क्या गोपाल, तो सब कुछ गायों से ही। देखिए जब व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है तो वो उसी पर ही केंद्रित रखता है अपना जीवन, है ना। इसलिए प्रभुपाद जब लेकिन अमेरिका में गए तो प्रभुपाद ने एक भक्त को पत्र लिखा, व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ योर कि डॉग्स आर केयर्ड एंड काउज आर किल्ड मर्डर्ड, तो अब की कैसी सभ्यता है आपकी। तो सच बात थी कि प्रभुपाद जी ने उनको बताया। लेकिन आज हम सुनेंगे कि भगवान कृष्ण के घर में कितनी गायें थी, कितनी 9 लाख। आम तौर पर ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के घर में 9 लाख गायें थी, लेकिन 9 नहीं ज्यादा थी भगवान के घर में गायें, क्योंकि देखिए कहा गया है कि जो उपनंद होता था, गर्ग संहिता में बड़ा एक्सप्लेन किया है इस बात को गर्ग मुनि जी ने, कि जो उपनंद होता था उसके घर में 5 लाख गाय होती थी, और जो नंद होता था उसके घर में 9 लाख गाय होती थी। लेकिन नंद महाराज जो हैं, नंद नहीं है खाली, वो क्या है नंदराज हैं, नंदराज के घर में गाय होती थी 1 करोड़। कितनी गायें थी भगवान कृष्ण के घर में, 1 करोड़ गायें थी। ऐसे ही जो वृष भानु होता था उसके घर में गाय होती थी 10 लाख, लेकिन जो वृष भानु वर है उसके घर में गाय होती थी 50 लाख। तो कृष्ण के घर में 1 करोड़ गायें थी, देखिए इतनी गाय। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि असली जो संपत्ति है वो होनी चाहिए क्या गाय, गाय से नापा जाता है। गर्ग संहिता में एक और कथा भी आती है, एक बार कृष्ण स्वयं आते हैं कुछ गोपी का रूप धारण करके और राधा रानी को सताते हैं, श्री राधा राधिकरमण देव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम देव भगवान की जय। तो स्वयं भगवान कृष्ण एक गोप देवी का रूप बनाकर आते हैं और राधा रानी को सताने के लिए निंदा करते हैं कृष्ण की, तो कहते हैं ये ग्वाले लोग ना बड़े गवार हैं, भगवान खुद बोलते हैं अपनी जाति के लिए। तो वहां पर राधा रानी कहती है, हे गोप देवी तुम जानती हो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ जाति जो है वो ग्वालों की है, क्योंकि वे लोग गायों की सेवा करते हैं और गाय जो है सबसे श्रेष्ठतम है। अब देखिए एक बहुत ही सुंदर है ये कोटेशन है, गोलोक धाम में, जहां गोलोक धाम स्थित है, तो उसके चारों तरफ बताया गया है खाई है। और जानते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज लिखते हैं ब्रह्म संहिता का, अगर आप वो श्लोक देखेंगे, चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्पवृक्ष लक्षा व्रतेशु सुरभिरभि पालयंतम। तो सुरभिरभि पालयंतम की इसकी व्याख्या करते हुए इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि जो कामधेनु गाय होती है ना, जो सुरभि गाय होती है, उसको भी दुहा जाता है तब वो दूध देती है। अगर दुआ ना जाए तो दूध नहीं देती, उनसे मांगा जाए तो दूध देती है। लेकिन भगवान कृष्ण के जो गोलोक धाम है उसकी जो गाय है वो थोड़ा डिफरेंस बताते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज उसमें पर्पट में। वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो गाय है वो कैसे दूध देती हैं, वो देती हैं कि फव्वारे जैसे चलते हैं। उनको इतना प्रेम है भगवान श्री कृष्ण से कि फव्वारे जैसे चलते हैं, भगवान को देखती हैं दूध निकलना शुरू हो जाता है। और जो गोलोक धाम है उसमें खाई है और खाई के चारों तरफ दूध भरा हुआ है उन गायों का, जैसे पानी भर देते हैं ना राजा लोग बड़ी बड़ी दीवार लगाकर ताकि कोई फांद के ना आ जाए। ऐसे भक्ति सिद्धांत महाराज बता रहे हैं कि वहां इतना सारा दूध है। और भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाती हैं उन गायों का दूध पान करने से, इतनी प्रेममयी वो गाय हैं। इसके अलावा श्रील प्रभुपाद इसी 10वें स्कंद के 35वें अध्याय के 19वां जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि गाय कैसे, कृष्ण भगवान कैसे गाय चराने जाते हैं। ये विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर का पर्पट है, वास्तव में प्रभुपाद ने नहीं लिखा, ये प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखा है। क्योंकि 14 जो अध्याय के बाद हृदयानंद स्वामी, गोपी प्राण धन प्रभु और द्रविड़ करके एक प्रभु थे, तो दोनों उन्होंने, तीनों ने मिलकर लिखा। उसमें विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर की कोटेशन मिलेगी आगे चलकर 19वें श्लोक में 35वां अध्याय कि भगवान श्री कृष्ण की जो गाय है उनको चार रूपों में बांटा गया है। उनके कलर हैं सफेद, लाल, काली और पीली। तो लेकिन एक गाय जो सफेद है इसके पीछे 25 कलर और हैं, 25 भागों में बटा हुआ है सफेद कलर भी, इतनी वैरायटी है भगवान के धाम में जो गायें हैं। तो कृष्ण जब ऐसे, कितनी गायें हो गई, 100 रंग की गाय हो गई, एक कलर में व्हाइट में ही 25 वैरायटी है, तो लाल में भी 25 वैरायटी है, काली में भी 25 वैरायटी है और पीली में भी 25 की वैरायटी है, तो 100 कलर हो गए गायों के। तो कृष्ण क्या करते हैं, और 8 अलग प्रकार की गायें हैं जिनके माथे में चंदन का तिलक है, तो 108 गायें हैं। और भगवान एक माला रखते हैं, उन पर गिनते हैं और गायों को बुलाते हैं। तो विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर बताते हैं कि वो कृष्ण बोलते हैं हे धवली, तो वो जो सफेद का ग्रुप है पूरा 25 कलर्स का वो आ जाता है। सफेद गायों के ग्रुप विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने 2-3 बताए हैं, हंसी, अब लोग दोहरा सकते हैं, हंसी, चंदनी, गंगा, मुक्ता। तो ये 24 वर्ग वापस आ जाते हैं जब गायें इधर उधर चल रही होती हैं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, लाल गायों को बुलाते हैं, हे अरुणी, कुमकुम, सरस्वती, तो ये लाल कलर में मिलती हैं ये गायें। फिर पीली में है पीता, पिंगला, हरी तालिका, तो ऐसे 25 पीले कलर की जो वैरायटी है वो भी आ जाती हैं। फिर है काली, तो काली को भगवान बोलते हैं श्यामला, धुमला और जमुना। तो इस तरह से 100 ग्रुप आ जाते हैं गायों के जब कृष्ण बुलाते हैं। लेकिन 8 जो ग्रुप हैं वो विशेष हैं, जैसे कृष्ण की पटरानियां जब हैं वो भी 8 विशेष हैं। तो ये जो 8 हैं इनके नाम भी आप उच्चारण कर सकते हैं, चित्रिता, चित्र तिलका, दीर्घ तिलका, त्रियक तिलका, मृदंग मुखी और सिंह मुखी। इस तरह से तो 6 नाम दिए ये विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर ने कि कृष्ण इस प्रकार से 108 गायों को बुलाते हैं। और गोविंद लीलामृत में कहा गया है कृष्ण क्या करते हैं, कुछ गायें जो जाना नहीं चाहती, क्योंकि गायों को पता है कि अगर गाय हम घर चले गए तो कृष्ण का दर्शन बंद हो जाएगा, तो अड़ जाती है, जाती नहीं है। लेकिन गोविंद लीलावर्त में बताया गया कृष्ण फिर क्या करते हैं, ऐसी गायों के सिर में हाथ रखते हैं और सिर में हाथ रखकर कहते हैं कि देखो दिन छिप गया है और तुमने खूब छक्कर के घास ले ली है और तुम्हारे बछड़े इस समय बहुत तड़प रहे होंगे तुम्हारे बिना और वो भूखे भी होंगे, अब घर चलो। तो गायें फिर धीरे धीरे पीछे आती हैं, उनके कृष्ण के साथ साथ आती हैं। तो और गोवर्धन को हरिदास वर्यु क्यों कहा गया, इसके पीछे भी यहां गोविंद लीलावृत में ही बताया गया, चूंकि गोवर्धन गायों को वर्धन करने वाला है, गायों की देखभाल करने वाला है, उन्हें घास, झरनों से पानी, शीतल जल देने वाला है, इसलिए वो कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। क्योंकि गोवर्धन क्या कर रहा है, कृष्ण के जो भक्त हैं गाय उनकी सेवा कर रहा है, इसलिए भक्त का भक्त होने के कारण गोविंद लीलावत में कहा गया है कि गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है। और जब कृष्ण लौटते हैं तो बताया गया है कि भगवान के दाईं ओर चलती हैं गायें और बाईं ओर चलती हैं भैंसे भी हैं वहां पर काले रंग की। तो स्वर्ग के जो लोग हैं जब कृष्ण आते थे यहां इसी वृंदावन में, तो बाईं तरफ भैंसे आ रही हैं, दाईं तरफ गायें आ रही हैं। तो स्वर्ग के वासी ऊपर से देखते हैं ये दृश्य, तो एक स्वर्ग का देवता कहता है ऐसा लगता है कृष्ण के दाईं ओर तो गंगा जी बह रही है और बाईं ओर जमुना जी बह रही है, क्योंकि वो सांवले रंग की है ना जमुना जी, और गाय जो है सफेद रंग की, तो इस तरह से वो देखते हैं। फिर अद्वैत प्रकाश एक ग्रंथ लिखा है सुभग स्वामी ने, ये सुभग स्वामी ने जो अभी हमारे इस्कॉन में है, पहले एक हो चुके, अद्वैत प्रकाश में वो लिखते हैं कि जब वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वृंदावन में आए, ब्रजमंडल में आए, तो सारी गायें और बछड़े उन्हें घेर कर खड़े हो गए और रंभाने लगे और रोने लगे, तो और चाटने लगे, पहचान लिया उन्होंने कि ये हमारे ही स्वामी हैं, वही स्वामी हमारे आए हैं वापस। तो सारी गायें उनका दर्शन करके आनंद में विभोर होकर के नाचने लगी, सारी गायें नाचती हैं भगवान श्री चैतन्य को देख करके। तो श्री चैतन्य भी देख करके नाचते और कहते हैं ब्रज मंडल में देखो कितनी भक्ति है इन गायों में भी, और स्वयं श्री चैतन्य भी नृत्य करते हैं गायों के बीच में। सोचिए क्या दृश्य होगा, सारी गायें नाच रही हैं और श्री चैतन्य नाच रहे हैं, इतना सुंदर वो दृश्य होगा। ऋग्वेद में देखिए गाय के विषय में कुछ कोटेशंस हैं वेदों से जो कि मैं पढ़ना चाहूंगा। ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय, अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और गाय के दूध का पान करता है तो वो स्वस्थ हो जाता है, अगर कोई कुरूप है तो ये फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें कहा गया है कि गाय का अगर कोई दूध पिएगा तो कुरूप व्यक्ति भी रूपवान बन जाएगा, ऋग्वेद का कहना है ऐसा। तो गाय का दूध पीना चाहिए, लेकिन उस गाय का, कौन सी गाय का, देसी गाय होनी चाहिए, ये ब्रिड की वाली गाय नहीं। इसको तो उत्तम महेश्वरी आए थे एक बॉम्बे से, जो गाय गोरक्षक बड़े फेमस, उन्होंने बताया था ये वास्तव में गाय नहीं है, दिखती गाय है। जैसे कृष्ण लीला में कौन था ऐसा जो दिखता कुछ था और निकला कुछ और, पूतना उत्तमेश्वरी जी यही बोलते हैं कि ये गाय दिखती है लेकिन है नहीं, ये पूतना है। जैसे पूतना दिखती थी लक्ष्मी लेकिन बाद में निकली राक्षसी। तो कभी भी भक्तों को इस दूध का पान नहीं करना चाहिए, ये दिखती गाय है लेकिन है नहीं वो। हाँ वो दूध ज्यादा देती है, और एक भक्त ने बताया है, इसकी कोटेशन भी आएगी, कि ये जो अंग्रेजी गायें होती है इनमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा होता है भारत की जो देसी गायों के मुकाबले, तो जो उसका दूध पीता है उसमें थोड़ा क्रोध भी होता है, थोड़ा क्रोध जल्दी आ जाता है ऐसे लोगों को जो इन गायों का दूध ना पी करके ब्रिड की भी गायों का दूध पीता है। ब्रह्म संहिता की कोटेशन लिखी जीव गोस्वामी ने, बहुत सुंदर, तो उसमें जीव गोस्वामी कहते हैं वैदिक यज्ञ गायों की पूजा हेतु किए जाते हैं, गायों के सम्मान में देवता भी खड़े हो जाते हैं जहां गाय निवास करती हैं। जैसे आपने देखा होगा गोपाष्टमी और गोष्ठाष्टमी आता है एक, उसी दिन दोनों उत्सव पड़ते हैं, गोपाष्टमी और गोष्ठाष्टमी। गोष्ठ का अर्थ होता है जहां पर गायों को रखा जाता है, तो गोष्ठ की सफाई साल में एक बार की जाती है गोपाष्टमी के दिन, क्योंकि जहां पर गाय बांधी जाती वो स्थान अशुद्ध नहीं माना जाता, चाहे वो भले ही गोबर करें गौमूत्र करें क्योंकि वो परम पवित्र है। तो जीव गोस्वामी लिख रहे हैं कि गायों को जब देवता भी देखते हैं तो सम्मान से खड़े हो जाते हैं। तो हम भक्तों को भी चाहिए कम से कम अगर गाय आगे से आ रही है तो हम कम से कम उसे प्रणाम जरूर करें, मन से तो प्रणाम कर ही सकते हैं। चारों वेद, छह वेदांग और उच्चारण करने की जो विधि है, पाठ करने की जो विधि है, इन सब का उद्गम गायों से हुआ है। ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता की अपनी पट के अंदर। फिर ऋग्वेद में कहा गया है गाय जो है रुद्रों की माता है और वसुओं की पुत्री है। रुद्रों की माता है, जो 11 रुद्र हैं उनकी माता माना गया गाय को ऋग्वेद के अनुसार, और वसुओं की पुत्री है, आदित्यों की बहन है गाय। और घी के रूप में जो घी है गाय का, हम लोगों ने सुना बहुत है कि अमृत होता है। आज तक देखा है किसी ने अमृत होता कैसा है? कि गाय के घी को बताया गया है। गाय के घी का एक नाम है आयु, पर्यायवाची वर्ड है गाय के घी का, आयु। आयु का अर्थ है जो लंबी आयु, दीर्घ आयु देने वाला है। तो गाय के दूध और घी को माना गया, गोरस कहा गया। इसलिए गाय के दूध को और घी को क्या कहा गया? अमृत का एक रूप है। क्योंकि अमृत तो देखिए कहीं मेडिकल स्टोर पे मिलता नहीं, किसी पंसारी की दुकान में मिलता नहीं, सुना जरूर है कि अमृत होता है, लेकिन गाय का जो घी है इसको बताया गया है। ये लिखा है विष्णु धर्मोत्तर नामक ग्रंथ के अंदर। ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। समुद्र मंथन से भी 5 गायें प्रकट हुई थी, जिसमें एक गाय का नाम था नंदा, जो सबसे महत्वपूर्ण थी उन 5 में से। महाभारत में देखिए गाय के विषय में बता रहे हैं भीष्म पितामह, बता रहे हैं दान पर्व के अंदर कि संपूर्ण जगत में अगर कोई प्रॉपर्टी गिनना चाहता है कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, तो गाय को बताया गया है। क्योंकि गाय हमेशा वर्धन करती रहती है। जैसे हमारे यहां भी गौशाला है, तो हमारी गौशाला में पहले 30 गाय थी। महाराज जी ने हमें गाय दी थी कि आप ये गाय पालो, तो हमने 30 गाय थी, लेकिन अब 5 में बढ़ के 115 हो चुकी है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड रखा हो ना, तो वो घटता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ ह्रास होता रहता है, वर्धन नहीं। तो भीष्म पितामह दान पर्व में बता रहे हैं इस संसार में सबसे जो श्रेष्ठतम संपत्ति है वो गाय है। तो इसलिए इस आज के श्लोक में दोनों जो चर्चा कर रहे हैं वसुदेव जी और नंद महाराज, वसुदेव जी यही पूछ रहे हैं कि आपकी गाय वहां पर सुरक्षित है कि नहीं है, उनको कष्ट ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर बृहत पाराशर स्मृति, देखिए पाराशर मुनि ने भी अपनी एक स्मृति लिखी है, उसमें बता रहे हैं कि गाय के परिक्रमा करने से, अगर कोई गाय की केवल परिक्रमा भी कर लेता है तो संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने का फल मिलता है उस व्यक्ति को, केवल गाय की परिक्रमा करने मात्र से। ये पाराशर मुनि बता रहे हैं अपनी संहिता के अंदर। गाय को अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भोजन या जल देता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक अश्वमेध कितना डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक गाय को अगर आप भोजन दे देते हो थोड़ा और थोड़ा जल दे देते हो तो कितना बड़ा लाभ है। तो ये बृहत पाराशर स्मृति के अंदर बताया गया। विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया अगर कोई व्यक्ति गौशाला खोलता है, गौशाला के लिए हेल्प करता है, आजकल गौशाला बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग गाय घर में तो रख नहीं सकते, तो विष्णु धर्मोत्तर कहता है ऐसा व्यक्ति राजा के समान पुण्य प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति राजा बन करके जनता का पालन पोषण करे तो उतना पुण्य उसको मिलता है। एक व्यक्ति तो एक घर को चलाए लेकिन पूरे देश को चलाए, पूरे साम्राज्य को चलाए, उसका पुण्य मिलता है अगर खाली कोई गौशाला की स्थापना भी करता है। गायों के खुर से उड़ी धूल, अगर मान लीजिए गायें जा रही हैं और उनकी खुरों से थोड़ी धूल उड़ रही है तो समस्त पापों को नष्ट कर देती है, अगर वो धूल हम पर गिर जाए तो। इसलिए इसका सबसे ज्यादा आस्वादन कौन करते थे? स्वयं भगवान कृष्ण। जिस समय गोप कुमार गए गोलोक धाम में, तो वहां पर जाकर वो बताते हैं कि मैं जब वहां गया तो लाखों लोग खड़े थे आरती की थाली लेकर के। मैंने पूछा यहां कृष्ण कहां मिलेंगे भाई, तो किसी व्यक्ति ने बताया कृष्ण अभी आने ही वाले होंगे, गोचारण के लिए गए हैं। तो जब मैंने देखा तो कृष्ण आ रहे थे और अपने केशों को बार बार अपने हाथों से पीछे कर रहे थे, और उनका जो मुखमंडल था वो गायों के खुरों से जो उड़ी धूल से मथा था। तो गायों की धूल स्वयं कृष्ण भी लेना चाहते हैं, सोचिए तो कितना इंपॉर्टेंट होगा कि गायों की धूल अगर गिर जाए हमारे मुखमंडल या कहीं भी, तो ऐसा व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गाय के सिर में बताया गया गंगा देवी निवास करती है, उनके गोबर में लक्ष्मी जी निवास करती है। तो गाय इतना महत्वपूर्ण। और आज के श्लोक में कहा गया देखिए निरुजम, और यहां तक हमने चर्चा कर लिया, अभी है बोर्य अंबु, यानी जल घास विरुधम, विरुधम का अर्थ है पौधे, वृद्धवनम जंगल, ये सब सुरक्षित हैं कि नहीं है, इसके विषय में भी एक श्लोक मिलता है। इसके विषय में श्लोक है, नरक पाले तू चंडाले काकमासम स्वचर्मणा चजाद गोचर चोणी कृषि दृष्ट भक्तिता। इसमें कहा गया है अगर कोई गाय के लिए गोचारण की जमीन उपलब्ध कराता है, इससे बढ़कर पुण्य नहीं है संसार में। अगर एक व्यक्ति प्रबंध करता है यहां पर गाय घास खाएंगी, और अगर कोई व्यक्ति जहां पर गाय चारण के लिए जाती हैं उस भूमि को नष्ट करता है, इससे बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं है। इतना बड़ा ये मिलता है, विष्णु धर्मोत्तर का है ये श्लोक भी, तो जिसमें गायों की सुरक्षा के लिए इतना कहा गया। ऋग्वेद में कहा गया गोपी प्रणीत मत सरम, अगर कोई व्यक्ति गाय का दूध पीकर गाय को मारना चाहता है तो ऐसा व्यक्ति अज्ञान में जीता है। तो एक स्थान में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गाय का वध करता है कितने युगों तक वो नरक लोक में वास करेगा। इसमें बताया गया जितने उस गाय के शरीर में रोम कूप है इतने युगों तक ऐसा व्यक्ति नरक में वास करता है अगर कोई गाय को मारना चाहता है तो। इतना महत्वपूर्ण, चूंकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे ये प्रिय गाय है। इसके अलावा हम बहुत जो भोग लगाते हैं, विष्णु पुराण का जो श्लोक है वो तो निश्चित रूप से 119 and 65, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो उसमें भी यही कहा गया गाय और ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान में गाय रंभाती है अगर वहां कुछ अशुद्ध भी हो तो वातावरण शुभ बन जाता है केवल गाय के बोल सुनने मात्र से। देखिए तो गाय का, इसलिए कृष्ण की जो पूजा हम करते हैं रोज चंवर डुलाते हैं वो भी गोपुच्छ से ही बनते हैं। इसके अलावा आपने कथा सुनी होगी सदन कसाई की, उसमें सदन कसाई की कथा सुनी है आपने, सब जानते होंगे बहुत महत्वपूर्ण कथा है, प्रभु जी ने तो सुनी होगी जरूर। एक व्यक्ति था जो मांस काट करके बेचता था और रखता था साथ में किसको, जो शालिग्राम शिला है उसको, उससे तोलता था मांस को, उसको पता नहीं था ये भगवान है। जो किसी ब्राह्मण ने जाते हुए ऐसे देखा, रहे ये क्या कर रहे हो भाई, ये तो आप भगवान को तोल रहे हो दूसरे पलड़े में मांस बेचने के लिए, मुझे दे दो। तो उस कसाई ने दे दिया उनको, वो ब्राह्मण अपने घर में ले आया, लेकिन घर में लाने के बाद भगवान ने दर्शन दिया मैं वहीं पे ठीक था, वो मेरा भक्त है, मुझे वहीं देके आओ। तो उस ब्राह्मण ने कहा रे, तो वापस देके आया। तो ब्राह्मण ने सोचा रे ये भगवान है, उस कसाई ने, सदन कसाई ने सोचा ये भगवान है, मैं तो इससे बड़ा गलत कार्य करा था, आज के बाद मैं सब बंद कर देता हूं और सीधा जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाऊंगा। दर्शन करने के लिए जब रास्ते में गया तो एक ऐसे घर में रुका, किसी पति पत्नी थे, उन्होंने कहा भाई मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूं एक दिन के लिए, मैं क्या रुक सकता हूं यहां पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ रुक सकते हैं आप। लेकिन रात में क्या हुआ, वो जो पत्नी थी उसकी स्त्री थी वो रात में आई कि मैं आपके साथ संग करना चाहती हूं। तो उसने कहा देखो मैं पहले से बहुत पापी व्यक्ति था, कसाई का काम करता था, मैं अब ऐसा पाप नहीं कर सकता, हे देवी आप जाइए। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम जिसको, जिससे तुम डर रहे हो मेरे पति से, उसका तो मैं गला काट के आई हूं, उसकी चिंता मत करो, मेरे साथ भोग करो। तब तो वो सदन बहुत घबरा गया, अरे आपने अपने पति को मार डाला, मैं जा रहा हूं, भागने लगे। तो उस स्त्री ने फिर शोर मचा दिया, उसने कहा कि ये व्यक्ति, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और जब मैंने मना किया तो इसने मेरे पति का गला काट दिया, उल्टा रिवर्स। और सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और गांव के लोगों ने, पंचायत ने फैसला किया कि क्या करना चाहिए, तो इस व्यक्ति के दोनों हाथ काट दो, इसने हाथों से स्पर्श करने का प्रयास किया होगा इस स्त्री को। तो सदन ने कहा कि मैं अब, जब पापी था तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब मैं भक्त बन गया तो कितनी समस्या। तो जगन्नाथपुरी जाकर के जगन्नाथ जी के सामने वो रोने लगा कि प्रभु ये आपकी कैसी लीला है। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जिस स्त्री ने अपने पति का गला काटा ये पिछले जन्म में गाय थी और जिसका गला काटा ये व्यक्ति कसाई था, तो उसने उसका गला काट दिया और तुम्हारे हाथ इसलिए काटे गए क्योंकि जब ये गाय भाग रही थी और ये कसाई पीछे पीछे भाग रहा था, तो तुम आगे से आए और तुमने दोनों हाथों से इस गाय को रोका था और गाय को पकड़ करके इस कसाई के हवाले किया था, इसलिए तुम्हारे दोनों हाथ काटे गए। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, वेदाहम समतीतानी वर्तमानानी च अर्जुन भविष्याणी च भूतानी माम तो वेद न कश्चन। गाय को हाथों से रोका तो हाथ ही काट दिए गए। इससे पता चलता है कि कृष्ण कितना प्रेम करते हैं इन गायों को। कहते हैं एक बहुत सुंदर लिखा है एक भक्त ने, एक ये भी कहीं जरूर कहीं से होगा, ये शास्त्र से होगा, लेकिन ये उसने ये मेंशन नहीं किया। कहते हैं कि जिस गाय मान लीजिएगा यहां खड़ी है और यहां से हवा आ रही है, वो हवा गाय के शरीर को स्पर्श करके आ रही है, तो वो हवा आपको शुद्ध और पवित्र बना देगी। गाय को स्पर्श की भी हवा भी अगर आप ले लेते हैं, सोचिए कितना महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जहां गाय निवास करती है वहां सर्प नहीं आ सकता, बिच्छू ऐसे जीव नहीं आ सकते। और गाय का जो गोबर है, देखिए साइंटिफिक इसको टेस्ट किया गया, अगर कोई गाय के गोबर का लेप कर ले पूरे शरीर में, तो जितना जहर है आपके शरीर से निकल जाएगा बाहर। एक बार एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और सांप के काटने से वो मूर्छित हो गया, श्वास भी बंद हो गई। लोगों ने सोचा ये मर गया होगा शायद, ये काशी की घटना है, ये सत्य घटना है। तो उसको शमशान घाट में ले गए, तो एक साधु वहां बैठा था, उस साधु ने कहा कि ये व्यक्ति को तुम लाए हो, ये व्यक्ति जीवित है अभी। उन्होंने कहा नहीं जी महाराज, देखो हमने हाथ लगा के देखा, श्वास नहीं चल रही है। उन्होंने कहा मुझे दिखाओ। उस काशी जी के साधु ने क्या किया, गाय का गोबर मंगाया और पूरे शरीर में गाय का गोबर लेप कर दिया, नाक को छोड़ करके पूरे शरीर में गाय का गोबर। आधे घंटे में उसको साफ किया, फिर से आधे घंटे बाद फिर से गाय के गोबर का लेप किया। उसके बाद देखते हैं कि उस व्यक्ति की श्वास चलने लगी, तो सारे व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए, कैसे जीवित हो गया। तो साधु ने कहा कि ये दूर से इसका शरीर बता रहा था, इसे सांप ने काटा है, और सांप के काटने से व्यक्ति ऐसा अचेत होता है कि श्वास भी रुक जाती है, और थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति जीवित हो गया। तो ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि जहां गाय का गोबर का लेप भी कर दिया जाए, तो जितना भी हमारे शरीर में टॉक्सिन बताते ना आजकल आजकल वो नेचुरोपैथी वाले जो बताते हैं कि आपके सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे, तो हम कहते हैं गाय के गोबर का लेप भी आप कर लीजिएगा, सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे आपके। तो जब सांप का जहर निकल सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। जब पृथ्वी देवी बोझिल होती है तो गाय का रूप बनाकर ही जाती है। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कारण है कि गाय जानती है कि कृष्ण, जब मैं गाय का रूप बनाऊंगी तो कृष्ण जरूर दयावान होंगे, इसलिए पृथ्वी देवी भी गाय का रूप धारण करती है। और उधर जब इंद्र ने गोवर्धन पूजा में जो अपराध किया था, वो भी गाय को आगे लेकर आया ताकि कृष्ण का मूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो भगवान उसको दंड देते, तुमने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है यहां पर। लेकिन जब देखा भगवान ने कि इंद्र आ रहा है सुरभि गाय को आगे करके, तो फिर भगवान थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए, कुछ नहीं कहा। कहते हैं कि जहां पर गाय रहती है उस घर में प्लेग हैजा की बीमारी भी नहीं हो सकती उस परिवार में, कितना बड़ा ये महत्व है। एक और बहुत साइंटिफिक चेक हुआ है, देखिए पीछे अगर बॉम्ब गिराया जाए, मान लीजिएगा ये विदेशों में एक परीक्षण हुआ, एक स्थान में बॉम्ब गिराए गए, तो जो सीमेंट के मकान थे उनमें रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत असर हुआ, वो बीमार पड़े बाद में, जैसे टाइम बम, ये अणु बम जो जापान में जो गिरे थे। लेकिन बताते हैं कि जिन घरों में गाय के गोबर से छत को लीपा गया था, दीवारों को लीपा गया था, उन घरों में 50% कम असर हुआ वहां के लोगों को रहने में। देखिए कितना साइंटिफिक ये चेक हुआ है, साइंटिस्ट मानते हैं कि यस ऐसा है। अगर कोई गौमूत्र का पान करे तो हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती, और अगर किसी का पेट खराब रहता है तो वो जो बछड़ी होती है, छोटी गाय होती है, उसका दूध, उसका गौमूत्र पीना चाहिए, उसका गौमूत्र पीने से पेट का रोग ठीक हो जाता है। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम है तो गौमूत्र लेना चाहिए। तो गाय के हिसाब से अगर हम देखें, एक घटना मिलती है, देखिए विदेशों की एक और घटना है गाय की, क्या कि चूंकि रासायनिक खाद डाली जा रही है अन्न के अंदर, खेतों के अंदर, तो खेत खराब हो गए हैं। तो वो अभी मुझे स्मरण नहीं हो रहा है वो कौन सा देश था, उसमें बहुत ज्यादा रासायनिक खाद डाली जाती थी। तो जानते उसने भारत को कॉन्टेक्ट किया, किसी ने उनको बताया कि गाय का गोबर और गोमूत्र अगर इन खेतों में डाला जाए तो ये जमीन फिर से उपजाऊ हो सकती है। तो भारत से कई हवाई जहाज भर के गया था गाय का गोबर गाय का गोबर भर करके गया और उस देश में जाकर के उसको डाला गया खेतों में, फिर फसल पैदा होनी शुरू हुई है। इट मीन्स कि गाय का गोबर को भेजा गया, सोचिए हवाई जहाज में भरकर भेजा, कई हवाई जहाज भारत से गए थे। ये राम सुखदास ने लिखा है अपने एक पुस्तक के अंदर। राम सुखदास हम जानते हैं ना, जो गीता गोरखपुर प्रेस के काफी सम्मानीय एक भक्त हुए, तो उन्होंने अपनी बुक में एक मेंशन किया इस बात को कि कई बार ऐसा हुआ। जो व्यक्ति गाय का दूध पीता है, देखिए गाय का जो दूध पीता है उसका स्वभाव शांत होगा, सौम्य होगा और बुद्धि तीक्ष्ण होगी, क्योंकि हमारे माइंड में ना सूक्ष्म तंतु होते हैं जो इस फिलॉसफी को समझ सकते हैं, शास्त्रों को समझ सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि इतने तीक्ष्ण कैसे थे? चूंकि गाय का दूध पीते थे, गाय का दूध पीने से वो सारे वेद शास्त्र इनको समझते थे। लेकिन यहां पर ये क्लियर रहे कि ये वो गाय नहीं जो आजकल गाय दिख रही है घरों में। प्रभुपाद जी ने तो एक स्थान में यह भी लिखा है कि बैल जो ब्रिड करके बैल आया है इसको खेती में यूज नहीं कर सकते हम। कैसे? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिल्ला नहीं होता, तो डिल्ला नहीं होता तो वो हल नहीं रख सकते इसके ऊपर, तो ये उसमें भी यूज नहीं हो सकता, खेती में भी काम नहीं आ सकता। इसलिए वो गाय ही काम आ सकती है, या तो गिर गाय हो या फिर हमारी जो देसी गाय है। एक बार एक और टेस्ट हुआ विदेशों में, विदेशों की कई मैंने लिए। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि एक संस्था बनी थी, आपने शायद अगर आप नेट पे चेक करना चाहें तो मिल सकता है, इस्कॉप, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर काओ प्रोटेक्शन, इस्कॉप। तो उसने ये टेस्ट कराया था कि उसने क्या किया कि घोड़ों के ऊपर किया गया ये परीक्षण। घोड़ों को कुछ घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया और कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया। तो जिन घोड़ों को गाय का दूध पिलाया गया वो इतने तेज थे, इतने फास्ट थे, दौड़कर जाते थे, और जिन घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया गया, जानते क्या हुआ? घोड़े जा रहे थे, आगे कहीं पानी भरा मिला तो घोड़े उसमें जाकर बैठ गए पानी में बैठ गए। तो लोगों ने कहा भाई ये घोड़े पानी में क्यों बैठ गए? तो किसी ने बताया भाई जो भैंस होती है ना वो पानी देखते उसमें बैठ जाती है, तो चूंकि इन्होंने भैंस का दूध पिया इसलिए ये पानी में आगे बैठ गए घोड़े। तो सोचिए मनुष्य को क्या होगा, मनुष्य कहां बैठेंगे अगर भैंस का दूध पिएंगे तो। तो इससे पता चलता है कि हमें गाय का दूध ही पीना चाहिए, गाय को प्रोत्साहन करना चाहिए। और हम जैसे मुझे पिछली बार किसी भक्त ने, शायद करुणाचंद्र प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी हम लोग गाय के लिए क्या कर सकते हैं, वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए आजकल ना विज्ञापन का जमाना है, हम भक्तों को चाहिए हम जहां भी जाएं गाय को प्रमोट करें, गाय का ग्लोरिफिकेशन करें, ताकि सब लोग कम से कम गाय रखें या जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको इस्तेमाल कर सकें, ताकि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, इससे निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण की प्रिय है गाय। इसके अलावा चूंकि हमारे यहां गौशाला है इसलिए मेरे पास, मैंने गाय के ऊपर काफी स्टडी किया है। एक सावधानी बरतनी चाहिए अगर आपके घर में गाय है, मान लीजिएगा कोई गाय को देखभाल करता है या आपके यहां गौशाला है, अगर गाय दूध दे रही है उसको अगले बच्चे के लिए नहीं तैयार करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं चूंकि अभी तो गाय दूध देनी शुरू हो गई, चार महीने पांच महीने निकल गए, तो अब हम इसको अगले बच्चे के लिए इसको तैयार करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गाय के लिए टॉर्चर होता है। हमारे गुरु भाई हैं विष्णु वाहन प्रभु अहमदाबाद में, अभी उनसे हमारी चर्चा हुई थी, अभी जब गुरु महाराज आए थे उस दिन महाराज ने बात कराई कि गायों को कैसे देखभाल करना है। तो अहमदाबाद मैंने जब महाराज ने बात कराई तो उस भक्त ने बताया विष्णु वाहन प्रभु ने कि ऐसी कंडीशन में गाय का टॉर्चर होता है प्रभु जी, कभी भी आप अगर गाय को ऐसे रखेंगे तो आपको अपराध लगेगा। जब गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको अगले बच्चे के लिए तैयार कराना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो गाय को खाता है, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे ना, ये बहुत ही आसुरी कृत्य है। अगर गाय को खाते हैं तो इसके विषय में मांस शब्द आता है ना, मांस खा दियती, माम माने मुझे, से माने वह खाएगा, ऐसा व्यक्ति, मांस शब्द का अर्थ है वह मुझे खाएगा, माम मुझे से वह खा देती खाएगा। तो मांस शब्द इसी से बना है, जो खाने वाला पहले गारंटी दे रहा है मैं आज तुझे खा रहा हूं कल तू मुझे खा लेना। ऐसे ही अंग्रेजी में देखिए अंग्रेजी में ट्रांसलेशन में इंग्लिश को हम क्या कहते हैं, मांस को, मीट। इसको भी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, मुझे खा लेना। तो जिसने शब्दकोश बनाया बिल्कुल सही बनाया कि मीट। इसके अलावा एक छोटी सी चर्चा करके मैं समाप्त करूंगा, गाय की हत्या, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा है क्योंकि प्रभुपाद ने मेंशन किया कि ये बहुत पाप कृत्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर एक चर्चा मिलती है कि हत्या की तुलना की गई है। देखिए, अगर एक हिंसक जंतु की हम हत्या करते हैं, किसकी हत्या करते हैं, एक हिंसक जंतु की हत्या करते हैं, तो एक हत्या काउंट होती है हिंसक जंतु की। अहिंसक जंतु की हत्या करते हैं, जैसे मान लीजिए चींटी है जो हिंसक नहीं है, उसकी हत्या करते हैं तो कहते हैं कि आपको 100 हत्या का पाप लगता है क्योंकि वो जीव अहिंसक था। हिंसक को मारेंगे तो एक हत्या काउंट होगी, लेकिन अहिंसक को मारेंगे तो 100 हत्या का अपराध लगेगा। लेकिन अगर किसी विशिष्ट पशु को हम मारते हैं, विशिष्ट पशु है कोई, जैसे घोड़ा है जो सम्मानीय है, तो ऐसे घोड़े अगर पशु को मारते हैं तो 10,000 हत्या काउंट होंगी। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक्सप्लेनेशन मिलता है। लेकिन अगर कोई किसी मलेच्छ व्यक्ति को मार देता है तो कितनी हत्या का अपराध लगता है, 10,00,000 हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर कोई शूद्र की हत्या करता है तो उसको 10,00,00,000 हत्या का पाप लगता है। लेकिन अगर कोई गाय की हत्या करता है तो वहां पर ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है 10,00,000,000 हत्याओं का पाप लगता है। उसने 10,00,000,000 हिंसक जीवों को मारा, इसका मतलब है इतना भारी अपराध लगता है अगर कोई गाय की हत्या करता है। जब भारत आजाद हुआ था तो जानते हैं भारत में कितनी जनसंख्या थी, भारत की आप में से जानते हैं कोई, 30 करोड़ थी भारत की जनसंख्या जिस समय भारत 1947 में आजाद हुआ था। और उस समय हमारे यहां गायों की संख्या कितनी थी, 90 करोड़ गाय थी भारत में, 30 करोड़ लोगों के लिए 90 करोड़ गाय थी। लेकिन आज भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है, 1,30,00,000,000, 130 करोड़। लेकिन आप जानना चाहेंगे इस समय गायों की संख्या कितनी है, इस समय गायों की संख्या केवल 9 करोड़ है। सोचिए 50 साल में हमने कितनी प्रगति कर ली है। हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं कि असली संपत्ति, जैसा मैंने महाभारत से बताया, असली संपत्ति है सोने से भी बढ़कर है गाय, क्योंकि गाय के दूध में सोना भी मिक्स होता है, इसलिए गाय का दूध हमेशा पीले कलर का होता है। जो सूर्य से जो रोशनी आती है डिल्ले के थ्रू होती हुई, वहां एक स्वर्ण रेखा होती है। लेकिन अभी दुर्भाग्य क्या है, 130 करोड़ लोगों के लिए 9 करोड़ गाय। लेकिन भारत के अंदर ये भी मिलता है कि कुछ लोग ऐसे नहीं, हमें तो गाय ही खानी है, और ऐसे भी लोग हैं भारत में, देखिए उनकी इच्छा है कि हमें वो गाय खानी है जिसने अभी अभी बच्चा दिया हो। तो उसका प्रूफ क्या होगा, वो जब होटल में जाता है व्यक्ति कहता है मुझे बीफ खाना है, वो गाय का होना चाहिए जो अभी अभी बच्चा दिया उसने, तो कैसे उसको संतुष्ट करते हैं हमारे जो होटल वाले लोग हैं, कहते हैं कि उसके सामने थन काट के रखे जाते हैं गाय के जो दूध देती है वहां से, ताकि वो खाने वाला ये चेक कर सके कि ये अभी अभी ताजी गाय ने बच्चा दिया है। वो काट के उसकी प्लेट में रखते हैं तब वो बीफ खाता है। तो कितना महा, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, ये कितना महा महा अपराध है। और 10वां स्कंद 24वें अध्याय 21वें श्लोक में एक यही श्लोक आएगा जो प्रभुपाद तात्पर्य में दे रहे हैं, गृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये श्लोक भागवत में भी आएगा जो गीता का श्लोक है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदम तुमित्यते। तो उसमें भगवान कृष्ण बोलेंगे, कृष्ण कहते हैं जो बिजनेसमैन है उसके 4 कर्म होने चाहिए, कृषि, गोरक्षा, व्यापार और कुसीदम। कुसीदम का मतलब कृष्ण कहते हैं ब्याज पर पैसे देना ये भी भागवत में आता है। तो लेकिन उसमें से जो गोरक्षा है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये 24वें अध्याय के 21वें श्लोक में आएगा आगे चलकर। तो हम भक्तों को आज के श्लोक से ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए, अगर हम सचमुच में ही कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आदि पुराण में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मैं उसे अपना भक्त नहीं मानता, लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है उसे मैं अपना भक्त मानता हूं। तो कृष्ण की प्रिया है गाय, तो हमें जहां भी हम जाएं गाय को कम से कम डोनेशन जरूर देना चाहिए, कुछ भोजन देना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए या गाय का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, और कुछ नहीं करें तो कम से कम गाय को नमन तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है या चाचा? यस प्रभु जी, किस पर्पज के लिए पाला जाता था? हाँ, ये एक्चुअली इसी ग्रंथ से मैंने लिया है कि जिसमें कि जब ये लीला हुई तो भगवान भैंस भी पालते थे। हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको कि आवश्यकता होगी या ज्यादा दूध की आवश्यकता होगी, इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लिखा है कि स्वर्ग के वासी ऊपर से देखते थे कि एक तरफ जमुना जी लग रही है यानी भैंस आ रही है। भगवान के धाम में मिलती हैं अलग अलग कलर्स की गाय, बहुत सारे कलर्स, करीब 100 कलर्स की गाय, लेकिन भैंस का डिटेल में इसमें नहीं बताया जो मैंने बताया आपको। तो इसका अगर आप चाहें तो मैं ये बता सकता हूं ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है कि जैसे लग रहा है कि दाई ओर और बाई ओर ये मिलता है गोविंद लीला अमृत के अंदर, जिसमें कि दाई ओर से गाय आ रही हैं, बाई ओर से भैंस आ रही हैं, तो लग रहा है एक साइड गंगा एक साइड जमुना है। तो ये तो आचार्य ही बता पाएंगे कि कृष्ण इनको भी पालते हैं तो किस भाव से पालते हैं, ठीक है। वैसे अभी वैसे अच्छा है आपका, अच्छा है आपका दर्द, ऐसा दर्द होना चाहिए हम सबके हृदय में ऐसा गायों के लिए। लेकिन फिर भी किसी ने मुझे बताया था अभी कुछ दिन पहले कि शायद सरकार ने एक चालू किया है, अगर आप गांव में रहते हैं और गाय पालते हैं तो 500 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले ये शुरू किया गया है, तो कुछ कदम तो उठाए जा रहे हैं, प्रयास किया तो जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा दर्द आपके हृदय में ऐसा दर्द होना चाहिए हमारे हृदय में गाय के लिए। निश्चित रूप से इससे भी हमें बहुत सुरक्षा रहेगी हमारी। यस, वही छोड़ देते हैं। इसका उपाय यही है प्रभु जी, जैसे मैंने जो बताया ना, गोबर और गोमूत्र, गाय का दूध और गाय के जो हमें बेनिफिट्स पता चलेंगे, तो अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे, तो कम से कम हम अपने घर में इतना कर सकते हैं कि गाय काउ प्रोडक्ट्स जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आए कि गाय कितना महत्वपूर्ण है। जब ये फैलेगा तो लोग गाय भी पालेंगे और गाय की सुरक्षा भी करेंगे। अभी लोग ये सोचते हैं कि जैसा मैंने बताया कि प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट काइंड ऑफ योर सिविलाइजेशन, डॉग आर केयर्ड एंड काउज आर किल्ड, सो व्हाट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन। सो इसलिए हमारा कार्य यही होना चाहिए कि हम जहां भी जाएं गाय को ग्लोरीफाई करें, गाय को नमन करें, और बच्चों को भी, आने वाले बच्चों को भी ये शिक्षित करें, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ यस प्रभु जी, यस, हाँ ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। यस, बिल्कुल यस, हम गौशालाओं में जाकर के मदद कर सकते हैं, अपना डोनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल सच बात। तो ऐसे गायों को अपना, जब वो कहते हैं ना चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, तो हमें हमें प्रयास करना चाहिए, तो अपने आप फिर सब लोग भी करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।